अगली सुरतूर है, जरा सा इनको देखे, ये एक जोड़ा है, सुरते जोड़ों में है, यानी कुरान की हर सुरत का एक जोड़ है। यहाँ बस इस वक्त की रियायत से देखते हुए अगर हम देखें तो दोनों में रब देखिए, सूरत जारियात की आयत 6 में जुमला आया था वाइन दीन अल वाक, ये दीन तो वाकई होगा, हिसाब किताब मुराद है। इस सूरत तूर में आपको आयत 7 में दिखेगा इन अजाब रब्बी का लवाक, और वाक्य पता है किसको कहते हैं उर्दू में, आप कहते हैं ना एक वाक्या, वाका कहते गिरने को, अभी पढ़ेंगे सूरत वाकया में, यही लफ्ज है वो भी, ठीक है। फिर इसी तरह कौम तागून का लफ्ज आया था आयत 53 में, इसमें भी कौम तागून 32 में आ रहा है। दोनों सूरतों का मजमून आखरत है। आइए देखते हैं, 49 आयत हैं, 52 नंबर की सूरत है। तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पे मूसा को पैगंबरी मिली, तौरात नाजिल हुई। मरकजी मजमून इस सूरत का इंतजार है, क्यामत आकर रहेगी। इन अज़ाब रब्बी कल वाक़िउन, 4 से 5 नबी के बीच के दौर में ये नाजिल हुई, ऐलाने आम हो चुका था, खुल के तबलीग कीजिए, नबी पर इल्जामात की बौछार थी। इस सूरत में आपको सवालात का अंदाज होगा, यानी जिस तरह आप कहते हैं ना क्वेश्चनिंग स्टाइल, सोल सर्चिंग क्वेश्चन है, जिससे इंसानी जमीर को क्यामत और आखरत के लिए बेदार किया जाता है। मुशरिकीने मक्का की आखरत से मुतल्लिक गैर संजीदगी भी दिखेगी, अल्लाह माफ करे, आज हमारे पास भी ऐसा ही कुछ हालात है, आज उम्मत मुस्लिमा नेक तो है लेकिन संजीदा नहीं है उस नेकी में। फिर इस सूरत में बहुत प्यारी आयत आने वाली है कि जन्नत में मुत्तकी वालदैन से कम अमल वाली औलाद मिलाई जाएगी, वो कैसे देखते हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जामात के जवाब में दावते हक जारी रखने का हुक्म मिल रहा है, और मुकज्जबीन के मुकाबले में मुत्तकीन का इंजाम दिखाया जाएगा और उनका तذکرہ है। आइए देखते हैं, और ये वो सूरत है, सहाबा लव्स दैट सूरह। मैं आप सबको कहूँ, बल्कि आज से इसी पारे से शुरू कर दें, जब घर में खामोशी हो ना तो तिलावत सुने, जस्ट तिलावत, नथिंग एल्स। ये सूरत पढ़ते हैं ना पता कैसे लगता है, चीजें ऐसे हिलने लग गई, आप इसका एक वो सौती हुजर खुद ही महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तूरी वकिताबिम मस्तूरिम फी रक्के मंशूरिम वल बैतिल मामूर। आयत 1 से 28 पहला रुकू है। जन्नत की दायमी नेमतें, यानी बाकी रहने वाली, कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की, और जो झिल्ली के खुले हुए वरक में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की, बेशक आपके रब का अजाब वाकई होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। उस दिन आसमान थर थराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, उस दिन जुटलाने वालों की पूरी खराबी है। नोट कर दीजिएगा इस आयत को, अब ये आपको इन पारों में कितनी दफा याद दिखेगी, कौन जुटलाने वाले, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद रहे हैं, जिसे वो धक्के देकर आतिशे दोजख की तरफ लाए जाएंगे, यही वो आतिशे दोजख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ क्या ये जादू है, या तुम देखते ही नहीं, जाओ दोजख में, अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना तुम्हारे लिए यकसां है, तुम्हें फक तुम्हारे किए का बदल दिया जाएगा। यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, जो इन्हें इनके रब ने दे रखी हैं, इस पर खुश हैं, और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। तुम मजे से खाते पीते रहो इन अमाल के बदले में जो तुम करते थे। रुकने को दिल नहीं चाहता इन आयतों का तर्जमा पढ़ते हुए, बिलीव मी, ऐसे लगता है कि एक चलती हुई ट्रेन है और आप बाहर खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। और यहाँ नोट कर लीजिए, अगर रुकी ही हो तो जन्नत के खाने, जन्नत की नेमते कब, वो नामाल के बदले जो तुम करते थे, ये फेथ इन एक्शन। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बराबर बिछे हुए शानदार तख्ते पर तकिए लगाए हुए, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से करा दिए। नोट कीजिए, अरेंज मैरिज होगी हूरों से, माँ बाप कहते हैं ना बच्चों की शादियां हम करा देंगे आपकी, बेटा हम आपकी शादी धूमधाम से करेंगे, तो वहां शौक पूरे कीजिएगा, धूमधाम से शादियां होगी, पूरों को भी गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं छोड़ा जाएगा जन्नत में। और जो लोग ईमान लाए, या बाप के हमारे खवातीन, और ऑफ कोर्स बापों को भी बच्चों से निस्बत तो होती है, ये माँ बाप पर औलादों की आयत आ गई। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, लेकिन बेचारे लुढ़क पुढ़क के अभी पूरा नहीं पहुंचे थे नेकियों पे के दुनिया से चले गए, तो क्या हुआ, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे और इनके अमल से कुछ भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीन, हर फर्द अपने आमाल के इवस गिरवी है, लास्ट एंड पे बात करते हैं थोड़ी सी इस पे। हम इनके लिए मेवे और मरहूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे, खुश तबई के साथ एक दूसरे से जामे शराब छीना छपटी करेंगे। यानी बड़ा फन का मोड होगा, फ्रेंडली माहौल होगा, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी ना गुनाह। और इनके इर्द गिर्द इनके नौ उम्र गुलाम फिर रहे होंगे, वह मोती थे तो जो ढके रखे थे। और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे, कहेंगे, इसको हाईलाइट कीजिएगा, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। यानी हम फैमिली के नाम पे मस्तियां नहीं करते थे, हमें अल्लाह से डर लगता था। खानदान ही है ना बेटा। बेटा क्या हुआ, अब नहीं तो है, देवर ही तो है कि मेरे बेटे को बुरे हैं, तुम क्या करी। और शादी है ना, खुशी करो, बच्चे की शादी है, माँ ना नाचे तो शादी कैसे हुई। ये कुछ नहीं था हमारा वतीरा। सबसे ज्यादा मुश्किल बंदे का नेक होना अपने घर वालों में। बाहर के लोग तो हमें बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी को 1 घंटा आप मिलते होंगे, किसी से आपका वास्ता आधे घंटे का होगा, किसी को 3-4 घंटे मिलते होंगे आजकल जैसे मिल रहे हैं। तो जो बाकी वक्त है घर वालों में, सबसे मुश्किल किसी बंदे का नेक रहना घर में होता है। ये आप सब भी घर जाकर अपने ऊपर रखा करें। आपका ये 2-2.5 घंटे का दौरे कुरान और आधा घंटा आना जाने कुलगाले, ये 3 साढ़े 3 घंटे आपकी नेकी नहीं काउंट होगी। पीछे जो 20-21 घंटे है ना, उसका भी हिसाब होगा। सबर सबर, यानी दिन में कुछ 30-40 पॉइंट्स आएंगे आपको आज के दिन में, जहां आप इसको कहेंगे ऐसे इंतजार, सबर, वेट प्लीज, वेट प्लीज। लेकिन घर वालों में रहकर नेक है ना, जो वो नेक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम खैरुल्ली अहली वा ना खैरुल्ली अहली। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों से बेहतर है, और मैं अपने घर वालों से बेहतर हूँ। अब आप में से कितनों के दिमागों में एक सवालों की लंबी लिस्ट खड़ी हो गई है, तो अभी वेट कीजिए, अभी अपने आप को पकाएं। कच्ची दाल से पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इस इल्म को जज्ब करें। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रही हूँ, पहली दफा सुन रहे हैं तो अपने लिए सुने। ये जो पहली दफा का सुन के हम आगे पहुंच जाते हैं ना, दूसरों को सुनने फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर झगड़े होते हैं। अब सोचिए कि उनकी याददाश्त कितनी तेज है। क्या कहते हैं कि घर वालों में तो हम बहुत डरते हुए रहते थे, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तुंदो तेज गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। क्या प्यारा, दुनिया में रहने का पूरा लाइफस्टाइल एक जन्नती का बता दिया। डर के, घबरा के, मोहब्बत से, घर वालों के साथ लाइट मोड में, ये छीना चपटी जन्नत में करनी है कि इधर भी कर लें। कभी अपने घर वालों को इतने प्यार मोहब्बत से खाना खिलाती हैं आप सिस्टर, जैसे अपनी दोस्तों को खिलाती हैं दावतों में, जैसे अपने उस्तादों को खिलाने का आपको शौक है। सच बताएं, इतने अदा से, इतनी मोहब्बत और सलीके से आप अपने शौहर के लिए खाना रखती हैं? उनको तो कहते रखा हुआ खा लें, मेरे लिए भी ले आइएगा। इज्जत दीजिए, इज्जत मिलेगी। प्यार दें, प्यार मिलेगा। मोहब्बत दें, मोहब्बत मिलेगी। और अगर इधर कुछ नहीं मिलेगा, सब प्रिजर्व होके वहां जमा हो रहा होगा। अपने शोहरों की ऐसे इज्जत करें कि दुनिया का वो सबसे नेक बुजुर्ग है। इस वक्त दुनिया में, इस जमीन पे जो सबसे नेक शख्स है ना, वो मेरा शोहर है। सबसे अच्छा शख्स मेरा शोहर है। आप रिगार्डलेस ऑफ दैट के वो क्या है, अभी उनका ईमान किस दर्जे का, आपकी नेकी इससे झलकेगी कि आपकी नेकी उनको नेक बना दे, आपकी नमाजें उनको नमाजी बना दें, आपके रोजे उनको रोजेदार बना दें। ये गुर सीख कर जो निकलता है, 2-4 साल के अंदर सारी फैमिली साथ ऐसे भाग दौड़ दीन की करती है कि भाई इस कुरान ने तो मेरी बेगम को इतना बदल दिया, मैं भी बदलूं। फिर अब्बा बदलते हैं, फिर बच्चे बदलते हैं, फिर आखिर दादी को भी बदलना ही पड़ता है। फिर वो कहती है मैं कहाँ रह गई, ये देखो बहू मेरे बेटे को भी ले गई, जिधर खुद जाती थी अब उसको भी ले गई, चलो फिर बेटा मैं भी जाती हूँ, मुझे तो बेटा अच्छा लगता है ना। ये होता है। फैमिलीज को बताइए कि आपको क्या मिला है, रो के बताएं, आंसुओं से बताएं, सिसकियों से बताएं, मुस्कुराहटों से बताएं, अपनी खिदमतों से बताएं, अपने किरदार में नरमी ला के बताएं, अपनी जुबान को छोटा करें, जिप द माउथ, दिल बड़े और जुबान छोटी करके दिखाएं कि कुरान आपको बिगाड़ नहीं रहा, कुरान आपको बना रहा। इस कुरान को पढ़ने के बाद तो टूटने से घर बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मत करिएगा कि आप आज यहाँ से पढ़ के गई और मियाँ साहब को कह दिया आप मुनाफिक हैं। जी क्यों? क्योंकि आप असर की नमाज नहीं पढ़ते, आप फजर में नहीं उठते, आप मुनाफिक है। और साथ फर फर हदीस सुना दें आप उनको कि मुनाफिक में फजर और असर की नमाज मुश्किल है। भाई आप एक दिन में कैसे उनको ये फतवा देने पे आ गई? बच्चे को तो आप शुरू में प्यार मोहब्बत से उसके कद से बड़ा या उसके वजन से ज्यादा बड़ा एक लंच बॉक्स देकर स्कूल में भेजती थी और खेल खूल के आता था। तो आप ये ईमान के बच्चों को ईमान की तरफ लाने में क्यों अपनी जल्दबाजी करती हैं? तो बहरहाल इसका ये भी नहीं मतलब कि आप हर बुरी चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन अल्लाह से बस अभी तो यही दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमें हिकमत दे। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक, 21 नंबर नोट कर लीजिए, आपके सामने मैं आयत भी पढ़ना चाहूंगी। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। दिल पे फुहार बरसती है इस आयत को पढ़ के। इंसान की फितरत में कि वो अपने बच्चे से प्यार करे, काले बच्चे से भी माँ प्यार करती है, गोरे से भी करती है, और अच्छे से भी करती है, बुरे से भी करती है। लेकिन ये जो ख्वाहिश, अगर अल्लाह ना करे जन्नत में जाकर पता चले कि एक बच्चा तो आई ही नहीं, मैं अकेली पहुंच गई, बच्चे आए ही नहीं, मियाँ भी नहीं आए, और मियाँ सोचे हाय बेगम किधर चली गई, क्या मजा आएगा उस जन्नत में? तो लिखिए हमारे बच्चे वहीं पहुंचेंगे जहां का हमने उनको एड्रेस दिया होगा। आज हमारी तरबियत और पेरेंटिंग के अंदर बच्चों को दुनिया का एड्रेस देने का रिवाज है, कामयाबी का एड्रेस है और उनकी दुनिया में पॉपुलैरिटी का एड्रेस है। जन्नत का डाल दीजिए तो जन्नत मिलेगी। आप क्या चाहती हैं कि आपकी वजह से आपके बच्चे जन्नत के आला दर्जों पे जाएं या आपके बच्चे आपकी वजह से जाएं? दोनों को अपोजिट कर लें। हदीस में आता है कि जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा अपने मुकाम पे, नेमतों को देखकर खुश मामूर, फिर बच्चों का ख्याल आएगा बच्चे किधर है। अब दो में से एक च्वाइस है कि बच्चे हैं जन्नत में, लेकिन माँ बाप मिसाल है कि 80 नंबर की जन्नत है, यानी 80 स्टार, 100 स्टार, 90 स्टार्स। उनको जवाब मिलेगा कि जी शुक्र है आपके बच्चे इस जहाज में आ चुके हैं, इसी जन्नत में हैं, लेकिन वो तो 40 नंबर पे हैं। बंदे के दिल में ख्वाहिश आएगी कि मैं उनको मिलूँ। अल्लाह ताला कैन आई गो एंड विजिट देम, अल्लाह मैं अपने बच्चों को मिलाऊँ? नो, ये तो नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम तो 80 दर्जे में बैठे हो, तुम तो फर्स्ट क्लास में बैठे हो, तुम्हें इकोनॉमी क्लास में बैठने की जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ठहरो, हम एहसान करते हैं, तुम्हारे बच्चों को ऊपर ले आते हैं, तुम नहीं जाओगे वो आएंगे। अब वो बच्चे आएंगे, माँ बाप का काम, आपको ये मिला, आपका ये घर है, आपका तो कमरा इतना बड़ा है, आपकी तो ये अच्छा ये वो है, आप परेशान है, अब तो इनके जाने का वक्त हो रहा है, इनको शायद 1 घंटे के लिए बुलाया। अल्लाह कहेंगे नो, जन्नत पे मेरा एक और असूल काम आ रहा है। एक दफा किसी आंख ने जन्नत की जो नेमत देख ली, जब जिसको फील कर लिया, टच कर लिया, वो उससे कभी वापस नहीं होगी। इस तहत अब आपके बच्चे भी आपके साथ ही रहेंगे। ये है जो आपके मेरे सामने लिखा है। दिल से दुआ कीजिए उम्मत के बच्चे और जिन साथियों के बच्चे बिगड़ गए, अल्लाह उनको हिदायत पे ले आए। फिर सूरत के शुरू में बैते मामूर की बात हुई थी, तो ये फरिश्तों का घर है। जब बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर अगर सीधी लाइन खींचे तो बैतुल मामूर है। मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए देखा था। तो आप कह सकते हैं कि बैतुल्लाह जमीन पर इंसानों के लिए और बैतुल मामूर फरिश्तों के लिए। मामूर क्यों कहते हैं? आमरा से, उमर कहते हैं आबाद करने को। 70,000 फरिश्ते रोज इसका तवाफ करते हैं और जो एक दफा कर गया उसको दोबारा मौका नहीं मिला। यानी इतने फरिश्ते हैं दुनिया में। तो क्या पता चला कि इन आयतों को पढ़ते वक्त क्यामत का आना ऐसे लगता है जैसे हम खुली आंखों से देख रहे हैं, वही ना भी होती तो इंसानी अकल तकाजा करती कि क्यामत आनी चाहिए। अच्छाई और बुराई का बदला दुनिया में हमेशा नहीं मिलता, तो वहां तो मिलेगा ना, जो सारे अच्छे काम करते और खत्म हो जाते फिर तो ज्यादती हो गई। कई लोग ऐसे दुनिया में दुखों तकलीफों में ही सोच पे रह जाते हैं, चलो कल अच्छे बदले मिलेंगे, क्यामत ना आई तो उनका तो बेचारों का नुकसान हो गया। और अपोजिट है जो 100-100 बच्चों के कत्ल करने वाले हैं कि अल्लाह उनको ऐसे छोड़ दे, दुनिया की अदालत अगर उसको कत्ल की सजा में कत्ल भी कर देगी तो बाकी वो 99 कत्ल किधर है? 99 टाइम तो नहीं किसी और मैयत को दोबारा करेंगे। तो अदल का तकाजा है कि क्यामत आए। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि अमल का जो बीज डाले वो वही निकले, तो क्या वो फिर जाया हो गया? नहीं, वो उनको जन्नत में मिलेगा। बस आप ये कह लीजिए कि ये दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाने से ज्यादा नहीं है, और दुनिया की मौत की तो मिसाल ऐसे ही है जैसे जेल से किसी कैदी का छूटना या यतुहन नफ्सुल मुतमईना। ارجعي الى ربي کی. مومن بے چین ہوتا ہے کب، یہ جسم کے یہ پنجرے میں سے میری روح نکلے اور میں اپنے رب کے پاس جاؤں اور جنتوں میں جاؤں اور ان سے ملوں جو وہاں موجود ہیں. الدنیا سجن المومن و روضۃ الکافر، یعنی یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک باغ ہے. تو یاد رکھیے کہ بیچ میں چھوٹا سا ایک موت کا وقفہ آئے گا مومن کے اور جنت کے بیچ میں، اس کے فوراً بعد جنت ملے گی. اللہ آپ کو مجھے وہاں کی نعمتیں دیں. پھر آئے 20 میں میں نے وہاں آپ کو تھوڑا سا الرٹ بھی دیا تھا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنِينَ، اور ہم بیاہ کریں گے ان کے، بیاہیں گے ان کے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اہمیت دے دی کہ جیسے والدین شوق سے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو حوروں کو بھی شادی سے جوڑا گیا ہے، ایسے ہی ان کو نہیں رکھا جا رہا لیونگ ٹوگیدر کے نام پہ. اور حقیقت ہے کہ مرد کی جنت عورت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جیسے مرد کی دنیا عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اللہ کسی کو بھی کسی کی جدائی نہ دے، لیکن عورت مرد کے بغیر پھر بھی رہ لیتی ہے. اس کے پوائنٹ آف انٹرسٹ بہت سے ہوتے ہیں، بچے، بچوں کے بچے، پوتے، نواسے، شادیاں، ان کے معاملات میں رہتی ہیں. لیکن آبزرو کر کے دیکھیں، جب شوہر کی وفات ہوتی ہے اور اسپیشلی ذرا ارلی ہو جائے 50s میں 40s میں، تو بیوی پیچھے سے سروائیو کر جاتی ہے. کئی آپ کے خاندان میں ویڈوز ہوں گی 10 10 15 20 20 25 25 سال سے، بلکہ کئی تو میاں کے بعد زیادہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزارتی ہیں کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. مرد جو ہے نا وہ گھل جاتا ہے. بیوی کی ڈیتھ کے بعد مرد اکثر ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی صرف بیوی کے ساتھ تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر کچھ لوگوں کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب سوال ہے طبیعتاً، تو میں نے کہا میں اس کا جواب دے دوں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ سرپرائز ختم. سرپرائز میں تو اور مزہ. چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت 21 میں کہا کہ اولاد کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے، تو اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں 80th میں ہوں اور میرا بچہ 40 سے 80 میں، اور میں اس کو وہاں بھی تانے دوں. دیکھا میں تھی نا تو تجھے بلا لیا، اور نہیں تو سنتا تھا، اور تو گانے سنتا، تو ذرا اور سنتا تو پھر دیکھنا تو 85 میں ہوتا. نہیں، لکھئے جنتیوں کو صرف اپنی نیکیاں یاد رہیں گی، اللہ ان کو گناہ بھلا دے گا. جی، کیونکہ گناہ دل پہ بوجھ ڈالتے ہیں، مایوسی پیدا کرتے ہیں، بس اللہ ہمیں کسی طرح پہنچا دے. میں نے ایک بچے سے یہ سوال پوچھا تھا، 10 12 سال کا بچہ تھا، کہ بیٹا وٹ ڈو یو وانٹ، کہ آپ اوپر ہوں اور آپ کے امی ابو آپ کی وجہ سے آئے یا آپ ان کی وجہ سے آئے نا. تو میرا جو اندازہ تھا اس نے اسے الٹ کہا، کہنے کا یس امی ابو اوپر ہوں اور میں اوپر آؤں نا. تو میں نے کہا بھائی وائی یو ڈیڈنٹ ڈو دس، کہ تم اوپر ہو؟ تو کہتا آؤٹ آف ریسپیکٹ میں نے یہ کہا. تو اللہ کرے کہ دونوں ہی آگے ہوں. اور گھر والوں میں بندہ چھپتا نہیں ہے کیونکہ وہ فطری انداز میں ہوتا ہے. فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے دعائیں کرنے والے جنت میں جائیں گے. تو ہم نے یہ ڈر پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ کل ان کے جنت کے اونچے درجوں میں جگہ پا سکے. اور ایک کام آج جا کر کریے گا، بچوں کے نیویگیٹر میں دنیا کی جگہ جنت لکھیے، کیونکہ آپ کے بچے وہی پہنچیں گے جہاں کا آپ نے ان کو رستہ دکھایا ہوگا. آگے جی، رکو نمبر 2 29 سے 49، نصیحت پھر بھی کرتے رہیں. فذکر فمن تبی نعمتی ربی کبھی کاہن ولا مجنون. تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اور کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ سوال 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 کہ سوچو سوچو سوچو. یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ क्या तू इनसे इस पर कोई उजरत तलब करता है? ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं। क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं? तो यकीन कर ले कि फरेब खुर्दा तो काफिर ही है। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि ये तो तह बतह बादल है। तो इन्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबिका पड़ जाए जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे। फी ही युस अकून, सायका का लफ्ज़ है ना, बेहोश कर दिए जाएंगे। और जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम ना देगा और न वो मदद किए जाएंगे, बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा भी असाब है, लेकिन इन लोगों में से अक्सर बेइल्म है। इसको हाईलाइट कीजिए, वलाकिन अक्सर हम ला यालमून। अब सूरत कैंट सुनिए। वसबिर लि हुक्मि रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तकूम। तो अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तुम्हारी आंखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़, और सितारों के डूबने के वक्त भी, नमाजों के टाइम इशारतन। एक आयत रुकू में ईमान से मतलब, तूर 33, अम यकुलूना तकव्वलहू बल्ला युमिनून, ना मानने के 100 बहाने। वक्त का नबी, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, जिस उम्मत के पास आए लोग फिर ना माने तो इससे ज्यादा महरूमी क्या होगी? आपने आयत 29 में दो इल्जाम देखे जो नबी पे उन्होंने लगाए थे, बिकाहिन वला मजनून। ये अल्लाह के नबी पर जो इल्जाम थे ना, ये उस दौर के फेक मीडिया के थ्रू थे। और काहिन कहते हैं उस शख्स को कि जो खुशी के अंदर अपने ऊपर काबू ना पा ले, और मजनून तो बेचारा मजनून ही होता है। आपके मेरे लिए अमल की बातें क्या है कि नमाजों को सही वक्त पे अदा करना है, तस्बीहात को अपना मामूल बनाना है, अपने अकायद की इसलाह करनी है, और मुखालफतों के डर से हक का साथ नहीं छोड़ना, तो कहिए फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागना है। कुछ अल्लाह से दूर भागते हैं, हम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हम रमजान में भी जैसे भाग भाग के आ रहे हैं और मस्जिदों में जाते और बाकी काम करते, हमने गैर रमजान में भी ऐसे ही करना है। अब सूरत तूर क्या थी? पहाड़, तूरे सीना, कुरान में और भी जगह आता है। अगली सूरत क्या है? नजम, सितारा। कायनात की सैर कराई जा रही है आपको, मुझे दोनों का रब देखिएगा। सूरत तूर का अख्तिताम क्या है? व इदबारन नजूम, सितारों के पलटने के वक्त पे अल्लाह की तस्बीह करें। और अगली सूरत है वन नजमी ज़ा हवा। ये है सूरतों के फवातिह और फवासिल। फवाते कहते हैं सूरतों के शुरू के हिस्से को, और फवासिल कहते हैं आखिरी को। इन दोनों में रब्त है। इसको पढ़ने के बाद तो यकीन आ जाता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, बंदे का नहीं है। सरसरी नजर में हमें ये नहीं समझ आता, लेकिन जरा सा डीप डाउन जाए तो समझ आता है। दोनों का रब्त में देखिए कि कौफ, जारियात और तूर आखरत के दलाइल थे इन तीन सूरतों में। अब अगली सूरत नजम, आखरत में निजात का असल दारोमदार अकीदा तौहीद पर है, और वही सिलसिले के अंदर अमल साले की क्या हैसियत है, और फरिश्तों और सालेहीन की शिफात पर इन्हिसार ना करो बल्कि खुद मेहनत करो। तो सूरत नजम का अगर आपको एक जुमले में लफ्ज बताऊं तो वही इलाही है। टॉपिक सूरत तूर में किताबे मस्तूर थी आयत 2 में, और इसी के पैरेलल सूरत नजम में फी सुहुफी मूसा आयत 36 में आने लगा है। और सूरत नजम 53 नंबर की सूरह है, 62 आयतें हैं इसमें। मरकजी मजमून है लात मनात उज्जा शेरा। ये उस दौर के पंचतन पाक थे। मक्का वाले इन बुतों की इबादत करते थे, इनके नाम भी आएंगे आगे जाकर सूरत नूह में। इस सूरत में भी आया लात और मनात का नाम, उज्जा का भी आया है। तो कहा कि इन बुतों पे या अपने इन नेक बुजुर्गों को जो आप चले गए और तुमने उनके नामों के बुत बना दिए, इन पे भरोसा करने की बजाय इस किताब पे अमल करो। थोड़ा सा सूरत नजम को समझते हैं, बड़ी ही अहम सूरत है। ये 2 हिस्सों में नाजिल हुई थी। पहला हिस्सा यानी पहला रुकू 1 से 18, ये मेराज के मौके पर 12 नबी में रजब में नाजिल हुआ। और दूसरा हिस्सा 19 से 62 यानी आखिर तक, ये हिजरते हबशा के बाद गालिबन 5 नबी में नाजिल हुआ। वही और हदीस की अहमियत को समझने के लिए ये सूरत बहुत ही अहम है। बुत परस्ती और शिर्क की तरदीद है, वही कुरान और वाकया मेराज की सच्चाई की दलील है। और दावत को मानने वाले और ना मानने वालों के दो मुख्तलिफ अंजाम है इस सूरत में। खुद साख्ता बातिल अकीदा शिफात तरक कर दो, कुरान से इंतजार करो। इसकी एक आयत आ रही है जिसमें सबसे पहला सजदा, ये बड़ी अहम बात आप नोट करें कि नजूल के एतबार से सूरत नजम वो पहली सूरत थी जिसमें आयत सजदा आया। हालांकि तरतीब में आप देख रहे हैं कि सूरत आराफ का सजदा आया था। बुखारी की रिवायत है 4582 नंबर की, उमैया बिन खल्फ ने आयत सजदा सुनकर सजदे की बजाय माथे पर मट्टी लगाई, यानी झुका नहीं और अकड़ के बस माथे पे मट्टी लगा ली। अल्लाह ने फिर उसका अंजाम भी नहीं अच्छा किया। और मनसब रिसालत की वजाहत है, वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, के नबी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते। वाकई मेराज का एक हिस्सा हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ चुके। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। वो जमीनी सफर था, मक्का से बैतुल मकदस बाय रोड था, अब बैतुल मकदस से सिदरतुल मुंतहा का सफर आप इस सूरत में पढ़ने वाले हैं। है ना कुरान इंटरेस्टिंग, एवरी डे न्यू स्टोरी, एवरी डे न्यू स्टोरी। हाँ, और यहाँ वाकये मेराज में कुछ अल्लाह की आयात का दीदार जो हुआ वो भी देखेंगे। और इस सूरत में बखीलों के रवैयों पर गिरफ्त आए 34 में, यानी बुखल की गुंजाइश नहीं है। इंसान की कोशिशें काम आएंगी मरने के बाद भी, सदका जारिया की सूरत में फफेरू इल्लाह आयत 39, और मक्का के सरदारों की गैर संजीदगी और उसकी पकड़ आयत 60 और 61 में आएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात का खुलासा इधर तकरीबन 10 जुमलों में आता है। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख्रा आयत 38, इंसान के लिए वही कुछ है जो वो कमाएगा आयत 39, इंसानों की कोशिशों का भरपूर बदला मिलेगा 40 से 41, आखिरत की तरफ लौटना है 42, अल्लाह ही हंसाता है और अल्लाह ही रुलाता है 43, अल्लाह ही जिंदगी और मौत देता है 44, नर मादा का जोड़ा नस्ल बढ़ाने के लिए है 45 46, दूसरी जिंदगी देना अल्लाह का काम है यानी अल्लाह की सुन्नत है। हर दौर के नबी ने ये बात बता दी कि मरने के बाद जी उठोगे, एक बात 47 आयत में। फिर दौलत मिले जायदादें मिले वही देता है, आप इस पे मान नहीं कर सकते 48, शेरा का रब है 49, चार कौमों की तबाही का तذکرہ 50 से 55। ये आपने पूरी सहीफा इब्राहिमी पढ़ ली है, सूरत आलम में भी एंड पे आता है ना फी सुखुफ इब्राहिम व मूसा, तो आप देखेंगे कि सूरत नजम खुलासा है एक नबी की पूरी तालीमात का। इससे ज्यादा मैं और दे नहीं सकती आपको, चलिए तर्जमा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1, 1 से 25, मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नजमीजा हवा मा दल्ला साहिबकुम व मा गवा व मा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। एक एक आयत दूसरे से जुड़ी हुई, कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है और ना वो टेढ़ी राह पर है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया। ये मेराज की आयत, जो जोर आवर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नजदीक हुआ और उतर आया, बस वो दो कमानों के बराबर फासले पर रह गया बल्कि इससे भी कम, बस इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं, इसे तो एक मर्तबा और भी देखा था, किसे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, सिदरतुल मुंतहा के पास, इसी के पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज जो इस पर छा रही थी, ना तो निगाह बहकी ना हद से बढ़ी, यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बास निशानियां देख ली। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे पिछले को, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं, ये तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है, यानी खुद तो बेटी की विदाइश पे रोना शुरू हो जाते हो और अल्लाह की बेटियां मुकरर करते हो, दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने इनके लिए रख लिए हैं, अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी, ये लोग सिर्फ अटकल के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, और यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है, क्या हर शख्स जो आरजू करे उसे मुयस्सर है, नहीं, अल्लाह ही के हाथ में है ये जहान भी और वो जहान भी। कितना फ्लो है नातों में। और ये बिल्कुल कुरान का वो हिस्सा है कि सिर्फ कुरान और सोच। आपको कोई हुक्म नहीं मिल रहा है नायतों में, अब कोई शराब कबाब और जुए और जिना और बदकारी की बातें नहीं आएंगी इन बारों में, इल्ला ये कि सिर्फ हिंट्स हैं। तो क्या पता चला आयत 3, वमा यंतिकु अनिल हवा, हदीस की अहमियत। आज लोग नबी सल्लम की हदीस को पल्यूट करते हैं और कहते हैं हदीसें तो 100 साल बाद लिखी गई। अल्लाह के बंदो, कैसी बातें करते हो, ये एक पूरा टॉपिक है। मैं इसको दो लफ्जों में समेटना चाहूंगी, अमीन उफ इस्समा जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अमीन उफ अल-अर्ध मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला लकब जो अल्लाह के नबी को अपने लोगों से मिला था वो क्या था? सादिक और अमीन। इतने सच्चे इंसान की जुबान से गलत बात नहीं आ सकती। इस मौजू को समझिए, सीखिए। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना फितना इनकार हदीस है। बड़ी मीठी जुबानों वाले, बड़ी लॉजिकल बात करने वाले लोग मीडिया की स्क्रीनों पे आके आजकल लोगों के ईमान को खराब कर रहे हैं। आज इस्लाम के पर्दे में कई ऐसी वेबसाइट्स बन चुकी हैं जो हैं गैर मुस्लिमों की, और वो हमारी नस्लों के जहन पल्यूट कर रही हैं कि हदीस कहाँ से आ गई। अगर आपका बच्चा या आपका कोई भी घर वाला, खुद आप भी अगर किसी लम्हे शक करे ना हदीस पे, तो फौरन औजबिल्ला पढ़े कि अल्लाह मुझे हिदायत से भटकाना ना, क्योंकि जब आप हदीस को खत्म कर देंगे तो दीन गिर गया। उस्ताद की इज्जत खत्म हो गई तो तालीम कहाँ से लेंगे आप? किताब की इज्जत ना हो तो आप सीखेंगे कहाँ से? इसका दिफा करना बहुत बड़ी वक्त की जरूरत है, और किसी भी अमल को अपनाने या छोड़ने के लिए मजबूत दलील की बुनियाद पे फैसला करना चाहिए। मनमानी ख्वाहिशात की पैरवी में अपनी आखिरत को दाव पे नहीं लगाना। आगे रुकू नंबर 2, 26 से 32, 26 to 32, शिफात सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होगी। यहाँ एक जुमला बोल देती हूँ, शिफात का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? शिफात शिफात है, हुक्म नहीं। बस सिफारिश अब कर दें, जज साहब माने ना माने। कई लोगों ने शिफात को हुक्म साबित करके हर दूसरे बुजुर्ग और हर दूसरे इंसान और न जाने किस किस चीज की सिफारिशों की उम्मीदें लगाई हुई, और उस पर खूब गुनाह करो, जैसे क्रिश्चियनिटी। जो करना करो, क्योंकि जीजस तुम्हारे बारे में झगड़ेंगे और वो पार्डन ले चुके और तुम्हारे बारे में क्रूसीफाई हो चुके। याद रखिए, ये बातिल नजरियात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकम मिम मलक इन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैया, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर ये और बात है कि अल्लाह ताला अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के औरतों वाले नाम मुकरर करते हैं। अक्सर आप देखिए देवियां फेमिनिन होती हैं। जो लोग बुतों को पूछते हैं ना, उनके बुत बड़े रंग रंगीले होते हैं, जेवर कपड़ों में लदे हुए, उसकी तरफ इशारा। हालांकि इन्हें इसका इल्म नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक वहम गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं देता। तो आप इससे मुंह फेर लें, जो हमारी याद से मुंह मोड़े और जिसका इरादा सिवाय दुनिया की जिंदगी के और कुछ नहीं, यही इनके इल्म की इंतहा है। आपका रब इससे खूब वाकिफ है जो इसकी राह से भटक गया, और वही खूब वाकिफ है इससे भी जो राह याफ्ता है। अल्लाह हमें राह पे रखे। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि अल्लाह ताला बुरे अमल करने वालों को इनके अमाल का बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला इनायत फरमाए। इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, अल्लाह हमें ऐसे ही में रखे, सिवाय किसी छोटे गुनाह के लमम। बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मगफरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है जबकि इसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओ के पेट में जनीन यानी बच्चे थे। बस तुम अपनी पाकीज़गी बयान न करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। तो एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 27 नजम, दुनिया का सबर आखरत के सबर से बचा लेगा। और दुनिया का सबर क्या है? कि अल्लाह की दीवी शरीयत पे जमे रहिए और इंतजारुल फरज, मुश्किल दिनों में अच्छे दिनों का इंतजार भी इबादत है। फेथ इन एक्शन, दीन में अपने जन और गुमान से कोई बात नहीं करनी। दुनिया के तालिब को आखिरत में कुछ ना मिलेगा, इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशों का एहतसाब करना है। अल्लाह गुनाहगार और परहेजगार दोनों को खूब जानता है। हमने अपनी नियतों को खालिस करना है और देखना है कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। फफिर्रु इलल्लाह या फफिर्रु मिनल्लाह, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई फफिर्रु मिनल्लाह की कैटेगरी में आए। आगे रखो नंबर 3, 33 से 62, इंसान का अमल इसके काम आएगा। बहुत अहम आयात है इसमें अकीदे और अमल के नाते से, यानी फेथ इन एक्शन। अफरईत अल्लज़ी तवल्ला वाता कलीलन व अकदा, क्या आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया। इसको हाईलाइट कर ले। जोश में, जज्बे में, ईमान की ताकत के बढ़ने में हम बहुत नेकियों के इरादे भी करते, नियतें करते, और जो ही रमजान का चांद गया हाथ रुक जाता, कुरान से, दीन से, नमाजों से, इबादात से, और अगर कोई देने की नियत की थी तो उससे भी भूल जाते हैं। अकदा का लफ्ज़ है इसके अंदर। क्या इसे इल्मे गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? क्या इसे इस चीज की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के और वफादार इब्राहिम के सहीफों में था? हाईलाइट करें, इब्राहिम अल्लजी वफा, बा वफा इब्राहिम, इब्राहिम वो जिसने वफाओं का हक अदा कर दिया। इतना प्यारा टाइटल किसी और को कुरान में नहीं मिला जो इब्राहिम को मिल रहा। यहाँ से आ गया वो 10 चीजें गिनने जो मैंने आपको इंट्रो में दे दी हैं। इब्राहिम बा वफा थे। अल्लाह ने जो उनको सहाइफ दिए उसका खुलासा कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की, और ये कि बेशक इसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि उसको अपने रब ही की तरफ पहुंचना है, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, और ये कि वही मारता है और वही जिंदा करता है, और ये कि इसी ने जोड़ा यानी नर मादा पैदा किया नुतफे से जबकि वो टपकाया जाता है, और ये कि इसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है, और वही मालदार बनाता और सरमाया देता है, वही शेरा सितारे कर। अब मैंने अपनी उंगलियों पे पूरे गिन लिए हैं, आप भी बाद में गिन लीजिएगा। अल्लाह किसी की तालीमात को ऐसे प्रिजर्व करता है। याद रखिए, आप हक के साथ बात करके दुनिया से जाएं, कोई आपकी किसी बात को रिकॉर्ड ना करे, किसी चीज को सेव ना करे। अल्लाह हवाओं में आपकी आवाज को, आपके काम को, आपके लिखे को, आपके सुने को, बोले को बखेर देगा। ये अल्लाह को अपने काम लेने आते हैं। हम जिन लोगों के नाम इस वक्त पढ़ रहे हैं, हजरत इब्राहिम को पता था कि मेरे नाम के साथ कुरान पाक की सूरत में, इस आयत में ये लफ्ज़ आने, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, पता था। तो पहले ही नाम पूछ के फिर काम करना, ये तो मूसा के जादूगरों की सुन्नत थी। ईमान से पहले नेकी करिए, दरिया में डालिए, मेरा काम सेव होगा, मेरा तो जाया हो जाएगा, फिर कौन पढ़ेगा, फिर कौन सुनेगा? वो जो मैंने लिखा था आपने तो डाला ही नहीं, और जो मैंने बोला था वो तो आपने आगे किया ही नहीं। सबको किसी एक बड़े से डब्बे में डाल के आग लगा दें, ऐसे नजरियात को। अल्लाह जाया नहीं करता, अल्लाह जाया नहीं करता, अल्लाह नहीं करेगा। वो तो नियतों को कल नशर कर देगा, और जो गलत काम करेंगे अल्लाह को उनको नीस्तो नाबूद करना भी आता है। और ये किसी ने आदे उला को हलाक किया और समूद को भी, जिनमें से एक को भी बाकी न रखा, और इससे पहले कौमे नूह को, यकीनन वो बड़े जालिम और सरकश थे, और वो बस्तियां जो उल्टी गईं, कौन सी कौमे लूत, इसी ने उलट दिया, फिर इस पर छा गया जो छा गया। जिब्राइल ने अपने परों को ऐसे किया उस कौम में, एक लूत की बस्ती, सदूम नाम था बस्ती का, और वो पूरी बस्ती जो थी ना वो हजरत जिब्राइल के परों में आ गई। फिर जिब्राइल लेके ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, जहां तक अल्लाह ने जा, वहां जाके ना उस छाज को उलट दिए, उतने ही प्रेशर से नीचे गिरे, और वो जमीन जिसके ऊपर थे सदोम की, उसके घड़े में गिरे। आपको ना प्रेशर से कोई चीज जाए तो नीचे गिरती है, तो वो वहां अंदर चले गए, जमीन में धस गए, यानी उनके ऊपर यानी बस्तियां उलटाई गई, फिर उसके बाद उनके ऊपर पत्थर बरसे, और आज वहां डेड सी है, बदबू आती है वहां, वहां की मछली मर जाती, वहां जिंदगी की हयात खत्म हो गई। ये इस कौम का अंजाम हुआ था। ये साबित कीजिए, यहाँ दुनिया में इसकी ग्लैमर दिखाया जा रहा है, आप कुरान की नायतों से जोड़े विदाउट कॉन्शियस किए, अपने बच्चों को कुरान का तर्जमा याद करा दें, आप देखेंगे कि उनको खुद ही ऐसी चीजों से नफरत होगी। आज पता है कि बुराई के ऊपर एक गोल्डन पेपर लगा हुआ है, वनीर है ऊपर, सिर्फ इसको अनवेल कीजिए। आप गोल्डन कागज का कोई भी खिलौना बच्चों को दे ना, तो ऊपर सबसे पहले आके वो ऊपर से पील कर देता है। आपने ये क्या किया, खराब कर दिया, बट उसके दिमाग में खोज, अंदर के अंदर क्या है। कुरान काम क्या कर रहा है इस वक्त के अनवील, ये जो वेस्टर्नाइज सोच, गंदे फिक्शन, गंदी चीजें, जिसने लोगों को ये दिखा दी कि कुरान और इस्लाम तो है ही बैकवर्ड, और मुसलमान तो होते ही निकम्मे, और ये और वो, आपको अल्लाह का कुरान दिखा रहा है कि उन कौमों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी इस बुरी हरकतों से बचाए और हम सबको भी। बस इंसान तो अपने रब की किस किस नेमत के बारे में झगड़ेगा, ये नबी डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से। आने वाली घड़ी करीब आ चुकी, अल्लाह के सिवा इसका वक्त मुय्यन पर खोल कर दिखाने वाला कोई और नहीं। बस क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो और हंस रहे हो, रोते नहीं हो? देखिए सूरत के एंड पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, तुम हमेशा फन मोड में क्यों रहते हो? तुम बोर क्यों होते हो? तुम्हें हर वक्त ये क्यों चाहिए और वो क्यों चाहिए? मैं नहीं चाहता, मैं बोर होता हूँ, मुझे मजा नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं, हमें उर्दू नहीं समझ आती, हमें मौलवी साहब की बातें नहीं समझ आती। तुमने अपने कल्चर को आज सारा वक्त जो जोश है ना नस्लों के दिमागों पे, वो फन है, हंसो मौज करो मस्ती है वो फन। किसी ने कहा उम्रे पे गए तो मैंने पूछा कि बेटा कैसा रहा बस योर उम्र? ओ आंटी इट वॉज फन। ला हो लबला को ते लबला, इतनी दूर आपकी अम्मा आपको उम्रे पे लगी? फन तो अभी इधर ही कर लेते, डिज्नीलैंड करीब था, फन तो फन होता। लेकिन ये एक बात है, आई एम गेटिंग बोर्ड। ये जो खुदकुशी और सेल्फ हर्टिंग और ये सब बलाएं ना, ये इस फन कल्चर का नाजायज बच्चा है। हमने अपनी जिंदगियों में इतना कुछ चीनी पानी और आर्टिफिशियल कल्चर घोल लिए कि हमारे बच्चों को नेचुरल नहीं समझ आता। और अब जो बेचारी मस्जिदें जोर लगाती हैं यूथ हलकात के लिए, और वो क्या कहते हैं अम्मी अब्बा नहीं आएंगे फिर आपको इजाजत है। मैंने इस साल ये देखा कि डिफरेंट एज ग्रुप के साथ मस्जिदें बेचारी सर्व कर रही हैं, ये इस एज से इस एज वाला और इस एज से इस वाला, और किसी ने यूथ को कैप्चर करने के लिए कहा जॉब ब्रिंग योर कार, अब वो अब्बा से गाड़ी टेस्ला की चाबी मांग रहे हैं और अब्बा जी घूर रहे हैं। नहीं मैंने वहां जाके दोस्तों को दिखानी है, मैं उसकी लाइटें खोलूंगा, मैं बंद करूंगा फन। ये सामरी के खेल है, ये तमाशे हैं। हम कल नीचे लगा देना कि इधर एक कोई जरा नीचे बाजार लगा दो तो औरतें दौरे कुरान के लिए आए, वो बाजार से कपड़े लेके खाने पी के चली जाएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। ये संजीदा दावत आपको दी जा रही है। आज इधर कोई ऐसी फन फ्रॉलिक रखें, देखिए इस मस्जिद का एक कोना खाली ना रहे। जिस मस्जिद में खाना होता है वो फन नहीं है, और जहाँ खाना नहीं होता उस दिन बेचारे मौलवी साहब अकेले बैठे हैं कि कोई आए तो जमात कर दे। इससे निकालिए, हम आपके ये ऑडियंस को लाखों में बदल सकते हैं हजारों से, बिलीव मी। ऐसी टैक्टिक्स हमारे सामने लोग ला के दिखाते हैं, मेरे सामने कई बातें ऐसी हुई, मैं कहती जिसको आना है वो आएगा, नहीं आएंगे ना तो बाद में सुन लेंगे। देखिएगा हक बात कभी जाया नहीं होती। तो ये जो हर वक्त हंसते 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 और फन फन का कल्चर है, इसको जरा सा कंट्रोल कीजिए, इसकी हद कोई नहीं है। ये जैसे को होमोसेक्सुअलिटी है ना, ये उसी फन कल्चर का अगला स्टेप है ना। पहले लिविंग टुगेदर था, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद तो मजा नहीं आता, वो तो एक पाबंदी है। अच्छा लड़का लड़की को पसंद करता है, अम्मा बाबा कहते हैं शादी कर लो, कहते शादी नहीं करनी, अभी हम वी आर टू यंग, यानी टू यंग टू गेट मैरिड, लेकिन रिलेशन रखना, ये क्या देख रहे हैं आप? तो इसको आप अपने बच्चों के साथ रिप्लेसमेंट के रखें। कुरान क्या कहता है, सूरह तौहा में नहीं पढ़ के आए कि तुम इबादत करो ताकि तुम खुश हो? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो याद रखिए कि अपने बच्चों के दिल में तकवा भरें दिन ब दिन, ना के बाकी भी भरें। अब इसका नुकसान क्या होगा, मैंने जो मौजू छेड़ ही दिया, तो मैं आपको थोड़ा किनारे पे ले जाऊं कि कोशिश करने वालों को अल्लाह अजर देगा, इबादत देगा, फायदा देगा, बट इसका नुकसान क्या है कि फिर मस्जिदों की भी हुरमत खत्म हो जाती है। आपको मस्जिदों में वो मंजर देखने को पड़ते हैं, पास बाहर उनकी सिक्योरिटी डबल होती है, जिस दिन लड़कियों की कोई अंदर क्या मुलायल हो रहा है, लड़कों और लड़कियों को एक मस्जिद में आप जमा करें, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना। फैमिली नाइट्स में पूरी फैमिली आती है, आपको क्या पता है कि क्या कुछ चीजें नजरों में पड़ती हैं। तो ये तो कोई बात नहीं कि हर वक्त आप बच्चों को अलग और बेटियों को अलग करके बैठे रहे, इस दुनिया में कहाँ सिर्फ औरतें होंगी और कहाँ सिर्फ मर्द होंगे। तकवा अंदर डालिए, मेरा मशवरा है कि मस्जिदों को बहुत संजीदगी से इस साल इस रमजान के तोहफे में ईद के चांद से पहले अनाउंस करना चाहिए कि हम ने नियत की है इस पूरे एक साल में हमारी मस्जिद में लफ्ज बलफ्ज कुरान होगा, लफ्ज बलफ्ज, ओनली लफ्ज बलफ्ज, कोई उसकी बा मुहावरा भी ना दे। क्यों भाई ये क्या है? फिर उससे आपको कुरान की अरबी समझ आएगी, तिलावत समझ आएगी, फिर आप रोएंगे, फिर अगले साल आपकी मस्जिद में इंशाल्लाह जब तरावी होगी ना तो पीछे हिचकियों की आवाजें आएंगी लोगों की। वरना अल्लाह के नबी की वो बात है कि तुम देखोगे कि क्यामत के करीब मस्जिदें सजी होंगी, संवरी होंगी, भरी होंगी, लेकिन एक भी अहले खुशबू नहीं होगा। वो पंपी ग्लैमरी माहौल में कहाँ से खुशबू आएगा? आज जो हरम में जाकर लोग फोटो में खींच रहे होते हैं हरम की और सेल्फियां बना रहे हैं, वहां किधर खुशबू रह गए? तो बहरहाल मौजू अहम था इसलिए बात हो गई, अल्लाह वक्त में बरकत दे। अल्लाह तआला फरमाते हैं बल्कि तुम खेल रहे हो, अब अल्लाह के सामने सजदे करो और इसी की इबादत करो। आयते सजदा अमल के नुक्ते हमारे आमाल हमारी मंजिल मुअय्यन करेंगे। अपनी नीयतों और आमाल का एहतसाब करते रहना है, हर काम में अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना है। हमारा रिस्क मुकर्रर है, इसे सिर्फ हलाल और जायज तरीकों से हासिल करना है। तो खूबसूरत पैगाम देकर सूरत नजम पूरी हुई।